है सब कौन से?
ओम शांति। आप सभी बाबा के दिल तक नशीन है, ब्राह्मण कुल की शान है। और जब मुझे टॉपिक के लिए कहा गया तो मुझे यही कहा, मेरे मन में आया कि क्यों नहीं हम आपसे ये डिस्कस करें, क्योंकि हम सभी ब्राह्मण परिवार का लक्ष्य ही यही है कि हम सभी अपने पुरुषार्थ के द्वारा विक्रमाजीत बने और कर्मातीत बन करके बाप के साथ वापस घर जाएं। तो इसी बात पर हम आपसे चर्चा करेंगे। राजयोग मेडिटेशन की जब हम बात करते हैं, उसका लक्ष्य ही है विक्रमाजीत बनना और कर्मातीत बनना। और राजयोग मेडिटेशन क्या है? राजयोग मेडिटेशन है सत्य बनना, सत्य रहना और सत्य को अनुभव करते रहना। अगर मैं इंग्लिश में कहूं तो बीइंग द ट्रुथ, लिविंग द ट्रुथ एंड रियलाइजिंग द ट्रुथ। सत्य हमें बनना है, सत्य हमें रहना है। सत्य हम जैसे हम सांस सुबह शाम आधा घंटा सुबह शाम नहीं लेते हैं, सांस हम दिन रात लेते हैं, रात में सोते सोते भी लेते हैं। ऐसा ही हमारा मेडिटेशन कोई आधा घंटा सुबह शाम नहीं है, हमारा मेडिटेशन श्वासों श्वास है, हर सेकंड हमारा मेडिटेशन है। तो सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य के दो विशेषताएं होती हैं। एक तो सत्य एटर्नल होता है, एटर्नल माना अविनाशी होता है। सत्य ना कभी पैदा होता है ना कभी मरता है। दूसरा, सत्य जो होता है वो सत्य कभी बदलता नहीं है, अपरिवर्तनशील है, अनचेंजेबल है। तो ऐसा क्या है जो कभी पैदा नहीं होता मरता नहीं, ऐसा क्या है? इस ड्रामा में तीन प्लेयर्स हैं, संसार रूपी ड्रामा में तीन प्लेयर्स हैं। उसमें एक तो परमात्मा है, राइट। दूसरा जिसे पुरुष कहते हैं, पुरुष माना आत्मा, एक आत्मा है उसे पुरुष भी कहते हैं, और ये प्रकृति है, प्रकृति भी है ना। तो तीन मुख्य प्लेयर्स हैं और तीनों सदा ही हैं। परमात्मा भी सदा ही है और आत्मा भी सदा ही है और प्रकृति भी सदा ही है। किंतु इसमें एक सदा सत्य है। सदा सत्य कौन है? इसमें से तीनों में से सदा सत्य कौन है? परमात्मा सदा सत्य है, आत्मा और प्रकृति ये दोनों बदलते रहते हैं। इन दोनों को गुजरना पड़ता है, सत्व प्रधान स्टेज, सत्व रजो, रजो रजो प्रधान, तमो और तमो प्रधान स्टेज से गुजरना पड़ता है। कहा जाता है ना सत्यम शिवम सुंदरम, इसका क्या अर्थ है? शिव ही सदा सत्य है, शिव ही सदा सुंदर है, शिव सदा सत्य है। तो आत्मा क्या है? आत्मा सदा सत्य है क्या? शिव सदा सत्य है, सदा ही अविनाशी है और सदा ही अपरिवर्तनशील है, सदा एक जैसा रहता, पूरा कलप 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 एक जैसा है, ना कभी पैदा होता ना कभी मरता, अजन्मा है, अयोनिज है, अभोगता है, सोचता है। किंतु आत्मा आधा कलप सत्य है, सत्युक्त रीता में सत्य है, सत्व प्रधान है, सत्व है, किंतु आधा कलप असत्य है। आत्मा देह के वश हो जाती है, मन के वश हो जाती है, संस्कारों के वश हो जाती है, कर्मेंद्रियों के वश हो जाती है, तब रजो तमो से निकलती है, सतो रजो रजो स्टेज, तमो और तमो प्रधान स्टेज से आ जाती है। ऐसे ही प्रकृति, प्रकृति भी सत्युग में त्रेता में सतो प्रधान और सतो है, किंतु कलयुग में द्वापर और कलयुग में रजो और सतो, रजो और तमो में आ जाती है। तो परमात्मा सदा ही सत्य है, और फिर परमात्मा शिव सदा सुंदर है। शिव सदा सुंदर माना, शिव सदा ही सुंदर माना, सुंदर माना पावन, एवर प्योर, शिव सदा ही प्योर है, पवित्र है, सदा पावन है। एक्चुअली पावन और पतित ये दो स्थितियां हैं। जब आत्मा सातों गुणों से भरपूर है अर्थात सतोपदान, सतोपदान शब्द कहां से आया, सतो माना सात, प्रधान माना भरपूर। जब आत्मा सातों गुणों से भरपूर है, सातों एनर्जी से भरपूर है तो सतो प्रधान कहते हैं उसे। तो सतो प्रधान स्थिति को पावन कहा जाता है। और जब आत्मा सातों गुणों से लगभग शून्य हो जाती है, सातों एनर्जी लगभग ना के बराबर रह जाती है, तो उसे कहते तमो प्रधान, और तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। तो आत्मा जो है आधा कलप, आत्मा आधा कलप तो क्या है, सुंदर है, सुंदर माना सतो है, और आधा कलप फिर श्याम बन जाती है ना, इसलिए आत्मा है श्याम सुंदर और परमात्मा है सदा ही सुंदर। सेम चीज प्रकृति की बात है। तो ये जो है स्थिति, अब हम ऐसे देखते हैं कैसे हम, अब जो विकर्माजीत और कर्मातीत दोनों में एक चीज कॉमन है, कौन सी चीज कॉमन है, कर्म है ना। विकर्माजीत में हम कर्मों पे जीत पाते हैं और कर्मातीत कर्मों के असर से हम बाहर चले जाते हैं। आज अगर हम जैसा भी कर्म करें, बुरा कर्म करें तो पाप कर्म है, मनमत पे परमत पे कर्म करें तो पाप कर्म कहलाता है, विकारों के वश होकर काम करें तो पाप कर्म कहलाता है, ठीक है ना। और अगर अच्छा कर्म भी करें, किसी का भला भी करें, किसी से अच्छा भी करें, अच्छा व्यवहार भी करें, तो उसका भी बंधन बन जाता है। बुरे कर्म का तो बंधन बनता ही बनता है, किंतु अच्छे कर्म का भी बंधन बन जाता है ना? नहीं ऐसा होता, आप क्या समझते हैं? आज अच्छे कर्म का भी बंधन है और बुरे कर्म का भी बंधन है। जिसका जिससे अच्छा कर्म का उससे लगाव हो जाता है, या उसको हमसे लगाव हो जाता है, वो हमारे साथ झुक जाता है या उसके प्रभाव में आ जाते हैं, और बुरा करें तो टकराव हो जाता है। और चारों चीजें अपवित्रता है, लगाव भी अपवित्रता है। ब्राह्मणों में वैसा विकार नहीं है, अभी ब्राह्मण में कोई स्थूल विकार नहीं है, अभी स्थूल अपवित्रता नहीं है, किंतु हम ब्राह्मणों में कौन सी अपवित्रता है, अभी भी लगाव है, किसी ना किसी से लगाव हो जाता है। कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, उसके गुण विशेषता देख करके, उसकी क्लास बहुत अच्छी कराई, किसी ने बहुत अच्छा समझाया, किसी ने हमारा ध्यान रखा, तो उससे लगाव हो जाएगा, किसी के प्रति झुकाव हो जाता है, बड़ों के प्रभाव में आ जाते हैं, है ना, लौकिक चाहे अलौकिक, और फिर टकराव। तो ब्राह्मणों में ये अपवित्रता है। जब भी याद करने बैठते बाबा को, कौन याद आएगा, कौन याद आएगा, बाबा याद आएगा, लगाव वाला याद आएगा। जो लगाव वाला होगा, झुकाव वाला होगा, जिसके प्रभाव में होंगे, जिसके टकराव में होंगे, वही याद आएगा। और ब्राह्मणों में एक और अपवित्रता है, कौन सी है, ड्रामा, सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। और हम बाबा के बच्चे ड्रामा में ये ऐसा, इसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, ये करना भी अपवित्रता है। क्योंकि वैध संकल्प आए ना, वैध संकल्प चले ना, तो जब भी हम क्या, क्यों, कैसे सोचेंगे, जब बाबा को याद करने बैठेंगे, ये क्या, क्यों, कैसे शुरू हो जाएगी। और एक बार क्या, क्यों, कैसे शुरू हुई तो आधा घंटा खराब हो जाएगा, आधा घंटा योग गया, ऐसा होता नहीं होता है। सेंटर में कोई बात हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाता है, कोई जिज्ञासु ऊपर नीचे होता है, कई बार भाई बहनों में कोई बात ऐसी हो जाती है ना, कोई सेवा की बात होती है, उस क्या क्यों में फंस जाते हैं ना, तो योग नहीं लगता है ना। उसी क्या क्यों कैसे में हमारा शाम का आधा घंटा पूरा हो जाता है, या सुबह का अमृतवेला भी कई बार उसी में पूरा हो जाता है नहीं। तो आज हम इसी बात को गहराई से देखते हैं कि ये कर्म से हम इससे विजय कैसे प्राप्त करें, और इसके क्या स्टेप्स हैं, इसके कौन से स्टेप्स हैं जिसके द्वारा हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, और क्या विधि हमारी होनी चाहिए। तो अगर हम देखें, सत्ययुग में तो हम सतो प्रधान थे, और त्रेता में हम सतो थे, 16 कला और 14 कला थे। हमारे कर्म कैसे थे? अक्रम थे, अर्थात वो प्रलब्ध हमें मिली हुई थी। हम जो भी कर्म करते थे उसका हमें कोई फल नहीं था, अक्रम थे, कोई फल नहीं था उसका। हम पिछले जो सत्संग पर जो हमने कमाई की थी, श्रेष्ठ कर्म किए थे, उसके आधार पे हम उसका फल खा रहे हैं। किंतु जैसे ही हमारी एनर्जी, जब त्रेता का अंत आता है तो आत्मा की एनर्जी लॉ ऑफ एंट्रोपी जो है उसके अनुसार, जैसे आप मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, मोबाइल को यूज कर ना भी यूज करो, आप देखेंगे 3-4 बजे होते होते आत्मा की बैटरी अपने आप कम हो जाती, कम से कम यूज करो तो भी आप मोबाइल की बैटरी अपने आप डिस्चार्ज होती रहती। तो आधी बैटरी जब हो गई, जब तक आत्मा की बैटरी या आत्मा रूपी बैटरी, उसमें ये सातों गुण, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, ये सात आत्मा में ऊर्जाएं हैं, आत्मिक ऊर्जाएं हैं। ये सातों ऊर्जाएं आत्मा के पास भरपूर हैं और आत्मा इस ऊर्जा के द्वारा मन को, बुद्धि को, संस्कारों को, पांचों कर्मेंद्रियों को और शरीर के 8 अंगों को नरिश करती रहती है। भरपूर आत्मा राजा है, आत्मा स्वराज्य अधिकारी, स्वराज्य माने स्व माने आत्मा, आत्मा का राज्य है, आत्मा की तीनों सूक्ष्म शक्तियों पर, मन बुद्धि संस्कार पर और पांचों कर्मेंद्रियों पर, आंख नाक कान मुख और त्वचा, बाहरी त्वचा और अंदरूनी त्वचा और शरीर के 8 अंग, हमारा ब्रेन, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे लंग्स, हमारा हार्ट, हमारा लीवर और पेट, हमारे सारे हार्मोनल सिस्टम, हमारी सारे ज्वाइंट्स, मसल्स, बोन्स और हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलने का, उसमें स्पेशली किडनी, ये हमारे 8 सिस्टम्स हैं। ये 8 के 8 अंग हमारे कंट्रोल में, आत्मा के कंट्रोल में है। एक्चुअली यही हमारी प्रकृति है। जब हम प्रकृति जीत की बात करते हैं, प्रकृति जीत का अर्थ ये नहीं कि हम ये पांचों तत्वों पर जीत पाते हैं, ये शरीर रूपी प्रकृति हमारे कंट्रोल में आ जाए, और ये शरीर रूपी प्रकृति हमारे कंट्रोल में आ जाए। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना ना, 5 तत्वों से, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश से बना हुआ है ये हमारा शरीर, 500 तत्वों से बना हुआ है। इसमें 70% तो पानी है, लगभग 25% लगभग इसमें भूमि है, कुछ वायु है ना, कुछ अग्नि है, कुछ स्पेस है, आकाश है। तो 5 तत्वों का हमारा शरीर बना हुआ है। तो आत्मा पे इतनी एनर्जी है, ज्ञान माने समझ, सत्य की समझ है, सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियों से बुद्धि भी भरपूर है, मन भी भरपूर है, संस्कार भी भरपूर है और हमारी आंखें भी भरपूर है। आंखों में ज्ञान भी है, समझ भी है, पवित्रता भी है, शांति भी है, कानों में भी, मुख से बोल में भी शांति भी है, प्यार भी है, अतिंद्रिय सुख भी है, आनंद भी है, शक्तियां भी है, आंखों में भी है, कानों में भी है, रोम रोम में सातों एनर्जी है, देवताओं के रोम रोम में सातों एनर्जी होती है। तो ये तब हमारी स्थिति थी, आत्मा की एनर्जी कम होती चली गई और हमारा आभा मंडल कितना बड़ा था, सत्युग में आभा मंडल कितना बड़ा था, हमारा दूर दूर तक आभा मंडल था। तो हम एक दूसरे के शरीर को देखते ही नहीं थे, एक दूसरे के शरीर पे हमारी नजर पड़ती ही नहीं थी। सत्युग में हमारा गुणों में व्यवहार था, हम गुणों में व्यवहार करते थे, दैवी गुणों में व्यवहार करते थे, मधुरता, सरलता, नम्रता, उदारता, धैर्यता, है ना, यही हमारे जीवन के मूल्य थे, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, आज्ञाकारिता, वफादारी, ईमानदारी, बड़ों को रिगार्ड देना, सम्मान, सबको सम्मान देना, है ना, ये मर्यादाएं थी हमारे जीवन में, हम भरपूर थे। तो जैसे जैसे हमारी एनर्जी कम होती गई, 16 कला, जबकि हम 16 कला की बात करते हैं, जब भी आप हम सुनते हैं देवताओं की महिमा क्या कहते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, इसमें मैंने काफी चिंतन किया, मुरलियां बहुत पढ़ी, बाबा से भी रूहियान में कई बार बात हुई। तो 16 कला का मतलब कुछ 16 तरह की कलाएं नहीं है कि 16, जैसे बाहर लिखा ना एक फाउंटेन के बाहर लिखा 16 कलाएं, ऐसी कोई कला नहीं है। हर गुण में 16 कला, मतलब हर गुण भरपूर 16 आने, है ना, हर गुण, मधुरता भी 16 आने, है ना, सत्यता भी 16 आने, पवित्रता भी 16 आने, जैसे चांद फुल मून होता है ना, फुल मून 56 गुणों में 16 आने, है ना, फुल मून स्टेज, 16 celestial degree. और जैसे जैसे आत्मा की वेटरी कमजोर होती है तो हमारी कला, गुणों की कला 14 कला हो जाती है, मतलब 16 से 14 हो जाती है. सुख और आनंद की प्राप्ति कम हो जाती है. त्रेता में शांति रहती है, रूहानी प्यार भी रहता है, कि तो अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति कम रहने लगती है आत्मा. फिर जब त्रेता का अंत आता है तो आत्मा के पास 8 कला ही रह जाती है, शुरू में 14 और लास्ट में 8. 50% डिग्री, जैसे तब तक आत्मा राजा है. आत्मा के नेक्स्ट जो शक्तिशाली वो है मन. आत्मा के बाहर मन है और मन का पूरे शरीर से कनेक्शन है. आत्मा, मन का कनेक्शन हमारे इससे भी है, आंखों से है, नाक से है, कान से है, मुख से है और त्वचा से भी है और पूरे शरीर से भी है. तो जैसे ही आत्मा की पावर 49% होती है तो मन की पावर 51% हो जाती है. मन की शक्ति कितनी हो गई? 51% है ना. अब वैसे भी आपने सुना, कॉर्पोरेट सेक्टर में सुना होगा, जहां शेयर मार्केट शेयर होते हैं ना, तो जिसके शेयर 50% से ज्यादा होते हैं राजा कौन बनता है, एमडी कौन बनता है? जब तक आत्मा की एनर्जी 51% थी आत्मा राजा थी. जब आत्मा की एनर्जी 50 हो गई तो कोई राजा नहीं. जैसी 49 हुई आत्मा, मन 51 हो गया, तो अब मन राजा बन गया. मन का कनेक्शन किसके साथ? कर्मेंद्र के साथ. अब जैसे ही हमारा ऑरा स्किन के लेवल पे आ जाता है, जैसे ही आत्मा की एनर्जी 50% होती है, ऑरा आभामंडल हमारा स्किन के लेवल पे आता है. अब शरीर दिखाई देना शुरू हो गया, आंखें दिखाई देनी शुरू हो गई, नाक कान दिखाई देनी शुरू हुई, एक दूसरे के ऊपर नजर जाने लगी, देह पे नजर जाने लगी, देह का आकर्षण, ये ऐसा, ये ऐसी, वो वैसा आकर्षण हुआ है ना. तो जैसे ही अब आंखों में क्या भरा? देह भर गई है ना. आंखों से क्या देखा? आंखों से क्या पढ़ा? देह को देखा, देह के बारे पढ़ा. कानों से क्या सुना? देह से सुना है ना. मुख से क्या खाया? उसने बनाया, मैंने खाया ना. पहले ये नहीं था उसने बनाया मैंने खाया, अभी था कि मुख, हम उसी के स्वाद में थे. खाने के स्वाद कोई खाली अनुभव करते, बनाने वाले के स्वाद को अनुभव नहीं करते थे, अभी बनाने वाले के स्वाद को अनुभव करने लगे ना. तो अब ये जो सारा देह वाहन अंदर दिल में, आत्मा के दिल में चलता गया, बुद्धि में भरता गया. तो अब जो मन जो है, मन किसके वश में? मन देह के वश में. मन देह के संबंधों के वश में आने लगा, देह के संपर्क के वश में आने लगा और देह के पदार्थों के वश में आने लगा. अब मन, अब देवता कराना बंद हो गया. अब मन के वश में आत्मा किसके वश में हो गई? मन के वश में. तो क्या कहलाना पड़ा? मनुष्य. क्या बन गए? देवता से क्या बन गए? अब मन राजा बन गया. पहले आत्मा राजा थी, अब कबर, आत्मा क्या हुई? कबर दाखिल हो गई और मन राजा बन गया है ना. तो इस तरह से हमारे अंदर क्या हुआ? अब जो है ये, जैसे आत्मा का जब देह देखी तो देह की आकर्षण हुई, इसी को काम विकार कहते हैं. ये आया और उसके साथ साथ क्या आया? लोभ आया. लोभ, अब देह है, देह के लिए चीजें चाहिए. हल्का विनाश हुआ, चीजें कम पड़ गई तो देह के लिए चीजें चाहिए, इकट्ठी करनी शुरू की, नाम मानशान इकट्ठा करना शुरू किया, जो देह के संबंधी से मोह हो गया और फिर जो इकट्ठा किया उसका अहंकार हो गया. पहले इकट्ठा नहीं करना पड़ता था, पहले इकट्ठा नहीं करना, सब कुछ मेरे पास था ही था. अविनाश होने से कमी पड़ गई, किसके पास ज्यादा किसके पास कम हो गया, और इकट्ठा करना पड़ा तो उसका, मेरे पास ज्यादा है उसका अहंकार हो गया, और फिर इस सबको बचाने के लिए क्रोध सेनापति ना, क्रोध सेनापति आ गया. तो इस तरह से 5 विकारों का जन्म हुआ. तो जैसे ही आत्मा, अभी क्या हुई? आत्मा थी पहले सत्व प्रधान, सत्व, अभी आत्मा रजो, रजो में ना, अब पैसे के पीछे जाने लगी, चीजों के पीछे जाने लगी, पेट के पीछे जाने लगी है ना, पेट में ना बिजनेस है ना, लेने देने के पीछे जाने लगी. तो ये रजो स्टेज आ गई. अब आत्मा मन के वश में हो गई, तो मन के वश में हुई, विकारों के वश में हुई, और फिर आया कलयुग. कलयुग अभी ये पापक्रम शुरू, अभी ये विकार शुरू हो गए, विकार माना अभी ये कैसे शुरू हो गए? विक्रम शुरू हो गए. रजो प्रधान अवस्था में विक्रम शुरू हुए, मतलब द्वापर से विक्रम शुरू हुए. और विक्रम फिर भी हमने इतना दुख दूसरों को नहीं दिया था, किंतु तो जैसे ही कलयुग आया तो आत्मा संस्कारों के वश हो गई. संस्कार माना जो चीज हम कर रहे थे वो आदत पड़ गई थी करने की, अब वही संस्कारों के वश हम हो गए, आदतों के वश हो गए। जब संस्कारों के वश हो गए, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, जो थोड़ी बहुत ही बुद्धि बची थी वो खत्म हो गई। और संस्कारों के वश हम कर्म, जैसे जानवर क्या होते हैं, पशु क्या होते हैं, पशु को जो सिखा दो वही करता रहेगा, पशु अपनी तरह से नया कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ऐसा ही कलयुग में इंसान हो गया कि पशु जैसा इंसान हो गया। बाबा कह रहे जानवर, इंसान कैसे हो गए, जानवर के वश हो गए, जानवर जैसे हो गए। द्वापर में भी विकर्म सतो रूप में थे, सतो रूप में थे, तमो रूप में नहीं थे, सतो रजो रूप में थे। कि तो द्वापर कलयुग आते आते विकार तमो रूप में आ गए, संस्कार के रूप में आ गए। और फिर तो क्या हुआ, जैसे ही हम और नीचे गिरे कलयुग के अंत में आके, तो तमो प्रधान स्थिति होगी। तमो प्रधान माना कर्मेंद्रियों के वश में हो गए। अब आंख दर्द हो रही है, मुझे टीवी देखना है, फिर भी सिर दर्द हो रहा है, नींद आ रही है तो भी देख रहा हूं क्योंकि आंखें कह रही देख लो। पढ़ना है पढ़ रहा हूं, मुझे नहीं पढ़ने को अच्छा लग रहा है, सिर थक गया है तो भी पढ़ रहा हूं। पेट भर गया है, जीभ कह रही खा लो खा लो, कोई बात नहीं खा लो, मुफ्त में मिल रहा है खा लो। पर कर्मेंद्रियां इतनी वश में, आत्मा कर्मेंद्र के वश में हो गई। तो ये हो गया एकदम से, क्या हो गया, रजो प्रधान नरक था, नरक माना ना अरक, ना अरक माना जिसमें आत्मा का कोई अरक नहीं, आत्मा के सातों गुणों का लगभग ना कोई सेंस ही नहीं है, ना ज्ञान है, ना पवित्रता है, ना शांति है, ना प्रेम है, ना सुख, ना आनंद। किंतु अभी गौरव नरक हो गया, गौरव नरक माना जहां बिल्कुल भी, जैसे आत्मा का सेंस तो है ही नहीं, किंतु देह की भी अति, विकारों की भी अति, एकदम कर्मेंद्रियां जैसे जानवर से भी बदतर। जानवर भी कोई काम जानबूझ के गलत नहीं करते हैं, जानवर को भूख लगती है तो काट, सांप भी किसको ऐसे काटता नहीं है, सांप भी जब कुछ छेड़ेगा तो काटेगा, पशु भी, शेर भी किसको ऐसे मार के खाता नहीं, भूख भूख लगती है तो मारता है, ऐसे नहीं किसी को 10-2-11 बीच में से जंगल में से 10 को मार दिया, ऐसा नहीं करता है। तो इंसान क्या करता है, आज बिना बात पे मारता है ना, किसी को बिना बात पे मारता है, 10 लोगों को मार देगा, 50 को मार देगा बिना बात पे, उसको गुस्सा आ रहा है इसलिए मार दिया, है ना। तो ये रोड़ नर्क एकदम, जैसे इसमें क्या हो गया, इसमें तो पाप, मतलब पाप एकदम से महापाप जैसे, तो पाप कर्म और अभी घोर पाप कर्म शुरू हो गए हैं। तो अब बहुत तेजी से पाप बने हैं। तो इस तरह से हमारे अंदर अभी ये हालत हमारी हुई कि अभी हमारे अंदर जैसे हम पूरे विकारों से भरपूर हो गए और पापों से भरपूर, पाप कर्म। तो इस तरह से हमारी जो है पूरी, हम गिरते चले गए। अब जो है, अब क्या होता है, अब हमें बाबा मिला। बाबा का काम क्या है, परमात्मा क्या है, सदा सत्य है। अब परमात्मा को हम याद क्यों करें, क्वेश्चन ये आता है कई बार, वैसे आप मैंने तो सभी अनुभवी हैं कि हम परमात्मा को तो याद करते ही हैं, कि तो परमात्मा को याद क्यों, कभी आपको प्रश्न उठता है कि भगवान को हम याद करें क्यों, परमात्मा को याद करने से हम पवित्र कैसे बन जाएंगे, परमात्मा को याद करने से हम पवित्र कैसे बन जाएंगे, कभी आपके मन में प्रश्न उठता है, जो थोड़े लॉजिकल माइंड के होते हैं उनके मन में उठता है ना, कि परमात्मा को याद करें हम बैठ के, चलते फिरते याद करें, हर समय याद करें, इसका क्या मतलब, क्या है इसका मतलब है? देखो आत्मा के 7 गुण है, है ना, आत्मा में 7 एनर्जी है, परमात्मा सागर है। कई बार आपने सुना होगा ना, एक बार मुरली चली थी बाबा की, कि बाबा स्वीट का पहाड़ है, बाबा ने कहा मीठे बच्चे बाबा स्वीट का पहाड़ है और तुम भी बाप समान स्वीटेस्ट बनो। तो हम लोग क्या करते हैं, मुरली पढ़ने सुनने के बाद ना हम 45 मिनट मॉर्निंग वॉक करते हैं, उसमें मुरली के पॉइंट्स पे मनन चिंतन मंथन करते हैं, मतलब 45 मिनट जब मिलते हैं हमको मनन चिंतन मंथन सिमरण करते हैं। दिन में तो बिजी हो जाते हैं पेशेंट देखने में, हॉस्पिटल में, आईसीयू में और चीजों में बिजी रहते हैं, पर तब भी मनन चिंतन करते हैं बीच बीच में टाइम मिलता है, तो कि तो सुबह सुबह 45 मिनट तो उस पर मनन चिंतन करते हैं। तो हम लोग मनन माना मुरली को रिवाइज करना, मनन रिवाइज करना, चिंतन माना गहराई में जाना, मनन माना रिवाइज कर रहे हैं पॉइंट्स को, चिंतन मना अभी हम उसकी गहराई में जाते हैं, बाबा मुझे ऐसा बनना है, मैं कैसे बनूं, मेरे को तो ये सारा दिन काम करना पड़ता है, जैसे आप बहने कहेंगे मुझे कोर्स कराना है, मुरली सुनानी है, मुझे वहां भी सेवा में जाना है, उस गांव में भी सेवा जाना है, उसमें भी वहां जाके सेवा करनी है ना, आज हमें इतने प्रोग्राम भी हैं, मैं एक के पीछे एक प्रोग्राम है, मैं कैसे करूंगी, मैं कैसा बनू, मैं मीठा कैसे बनू। बाबा कहते मीठे बनो। बाबा मैं कैसे मीठी बनू, मैं कैसे मीठा बनू। तो बाबा से बातचीत करते गहराई में जाते हैं, मुझे बाबा मुझे बनना तो है पर मैं बनू कैसे। फिर मंथन मना हम बाबा की याद में खो जाते हैं और मंथन बाबा से पूछते हैं, बाबा मेरे को तो समझ में नहीं आया, आप मुझे बताओ मैं क्या करूं। कई बार बाबा हमको कहते हैं मुरली में वो दिलाएगा, बच्चे अभी तो 6 दिन पहले मुरली चली थी ना बच्चे, वो 74 की मुरली तुमने पढ़ी थी ना, उसमें था ना ये वाली बात, वो खोल के पढ़ो। फिर हम खोल के पढ़ते हैं तो हाँ ये बात समझ में आ जाती है, ऐसे बुद्धि में टच होता है। कई बार हम बाबा से कनेक्शन जुड़ जाता है, ऐसे मनन करते करते मगन हो जाते हैं, चिंतन करते करते मगन हो जाते हैं। फिर बाबा से पूछते बाबा इसका क्या मतलब है, ये स्वीट का पहाड़ का क्या मतलब है, स्वीटेस्ट बनने का क्या मतलब, मीठे बनने का क्या मतलब है, कैसे हम सबको मीठा बोले। तो बाबा ने कहा बच्चे स्वीट का मतलब है सतो प्रधान, स्वीट का मतलब है सतो प्रधान, बस सातों गुणों में भरपूर बनो। और बाबा स्वीट का पहाड़ है इसका क्या मतलब है, बाबा सात गुणों का सागर है, बाबा सात गुणों का सागर है और तुम क्या बनो, सात गुणों में भरपूर बनो। तो सात गुण में जो भरपूर होगा, ज्ञान माना ज्ञान में भरपूर होगा, उसको सत्य की समझ होगी, पवित्रता होगी, पवित्र अभी हम उस पर आते हैं धीरे धीरे, तो कैसे हम उसमें हम जो है कैसे फिर ऐसे बन जाएंगे, फिर हमारा व्यवहार सबसे ऑटोमेटिक मीठा होगा और बाबा तो सागर है ही उसका। तो फिर अब ये जो मंथन निकला मक्खन निकल आया, सिमरन माने इसको कार्य में लगाओ, कहते ना सिमर सिमर सुख पाओ। अब जो मक्खन निकला उसको कार्य में लगाओ, सिमर सिमर सुख पाओ। अगर मैं अब सतो प्रधान मन के हर एक से मिलूंगा या मिलूंगी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो क्या होगा, मेरा व्यापार उससे मीठा होगा। अब ये कार्य में लगाया तो जिससे मैं मिलूं, जिससे बात करूं, जिसके व्यवहार में आऊं, जिसके संबंध संपर्क में आऊं, मीठा बन के मिलूं, मतलब सतो प्रधान, उस सागर से कनेक्शन जोड़ के, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ के, बाप से कंबाइंड होके फिर मैं लोगों से बातचीत करूं, व्यवहार करूं। अब मैंने किया तो मेरे अंदर रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि मैं एक नियम है कि हम जो कर्म माना क्या, देखना भी कर्म है। इन कर्मेंद्र से जो हम जो भी कर्म करते हैं, शरीर के द्वारा हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म कहलाता है। इन कर्मेंद्र से देखते हैं ना, देखना भी कर्म है, पढ़ना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, हाथ पैरों से कुछ करना भी कर्म है, ये सारा कर्म है और ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है अंदर, ये सारा कुछ अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। विकारों के वश कर्म किया, संस्कारों के वश कर्म किया, कर्मेंद्रियों के वश कर्म किए, ये सारे पाप कर्म बन गए और अंदर रिकॉर्ड हो गए, जन्म बाई जन्म रिकॉर्ड होते चले गए। 22वें जन्म में मैंने जब 21 जन्म पूरे किए, रजो मतलब द्वापर का पहला जन्म जो था मेरा, सत्युग त्रेता में मेरा कोई भी, सिर्फ मेरा 100% कॉन्शियस माइंड था, कॉन्शियस माना पूरा मन मेरा कंट्रोल में था, जो संकल्प कथा था वो सिद्ध था, जो मैंने सोचा वो सिद्ध हो जाता था, प्रकृति मेरे साथ फ्लो करती थी, पांचों तत्व मेरे साथ फ्लो करते थे। आपको पता सत्युग की आपने मुरलियां पढ़ी होंगी, जब वहां पे देवता चलते हैं, पेड़ आराम से खड़े हैं, कोई हलचल नहीं हो रही, पंछी आराम से बैठे हैं, जैसे ही देवता देवी देवता वहां से निकलते हैं, पेड़ों में से हवा निकलने लगती है, पेड़ अपने आप म्यूजिक, उसमें जब हवा निकलती तो उसकी पत्तियों से म्यूजिक निकलना शुरू हो जाता है, पंछी गीत गाने लगते हैं, है ना। जैसे मेरी एनर्जी उनको टच करती है, पेड़ को, पंछियों को, प्रकृति के, तो वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं, ऑटोमेटिक, कहना नहीं पड़ता, हवा भी अपने आप बहने लगती है सड़क पेड़ों के बीच में से ना, तो ऑटोमेटिक है, जहां जहां हम जाते हैं ऑटोमेटिक वहीं वहीं पर, जैसे कहते हैं मधुबन निवासी जहां जाते हैं, टीचर बहनें जहां जाती हैं, वहीं पर वैसा मधुबन बन जाता है ना, क्योंकि वो अपने साथ आभा मंडल लेकर के जाते हैं, अपनी कमाई को साथ लेकर के जाते हैं। दादी जहां जाती है वहीं पर मधुबन बन जाता है ना, तो ये जो है जैसे ऐसा ही, जहां पर एक देवी देवता जाता है वहीं पर क्या बन जाता है, देवालय बन जाता है, है ना, ये नहीं कि महल में देवालय है, नहीं, वो जहां भी जाएंगे देवता ऑटोमेटिक, पिकनिक पे गए वहीं पे देवालय बन जाएगा, है ना, वहीं पे नेचर ऐसी बन जाएगी, है ना। तो ये प्रकृति दासी, जैसे इस तरह से प्रकृति दासी होती है ना। तो जैसे त्रेता युग आया तो बताए, सॉरी जैसे इसमें द्वापर का शुरू हुआ, तो जो मेरे अंदर क्या था, दिल में पहले मेरे क्या था, सिर्फ एक मैं आत्मा हूं ये था, और आत्मा भरपूर थी साथ, बाबा मेरे साथ साकार में नहीं था कि, तो बाबा मेरे संस्कारों में था, देवताओं के साथ परमात्मा साथ में नहीं होता कि तो संस्कारों में होता है, जैसे बाप मर जाता है कि तो बच्चे के अंदर बाप के संस्कार रह जाते हैं, तो बाप संस्कारों के साथ रूप में बच्चे के साथ रहता है, सारी उम्र रहता है, ऐसे ही बाबा सारे सत्यु त्रेता में हमारे साथ संस्कारों के रूप में रहता है। तो हमारे अंदर वो था कि, तो जैसे ही हमारे अंदर आया तो दिल में देह आने लगी, कॉन्शियसनेस से बुद्धि में देह आने लगी, देह के संबंध आ गए, देह के स्वभाव संस्कार आ गए, अब विवेक कन्फ्यूज होने लगा, विवेक माना सत्य को प्रश्न शक्ति खराब हो गई, निर्णय शक्ति कन्फ्यूज, निर्णय शक्ति करप्ट भ्रष्ट हो गई, चित्त बेचैन हो गया, चित्त बेचैन हुआ तो अब स्मृतियां मन में है, चार बातें जिसे हम इंग्लिश में टीम कहते हैं, स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प, थॉट्स इमोशंस एटीट्यूड्स और मेमोरीज। तो स्मृति कौन सी फाइलें खुलने लगती हैं, अब द्वापर युग की फाइलें खुलने शुरू हो गई, द्वापर माना अब विकारों की फाइलें खुलने शुरू हो जाते हैं, तो विकारों की हमारी मनुष्य की फाइलें खुलने शुरू हो गई, वृत्ति में लगाव झुकाव प्रभाव टकराव आ गया, भावना उसी अनुसार लगाव वालों के साथ अच्छी भावना, झुकाव वालों से अच्छी भावना, प्रभाव वालों के साथ भी अच्छी भावना, और टकराव वालों के साथ दुश्मनी की भावना, और वैसे ही फिर संकल्प चलने शुरू हो गए, और वो एनर्जी जो थी आत्मा में, एनर्जी पहले ही कम हो गई थी और बीच में एनर्जी और कम पड़ गई, तो अंगों में बीमारी आने लगी, इसलिए हम बीमार होने लगे। पहले बड़े बड़े राज परिवारों में बीमारी होती थी, राजाओं को बीमारियां होती थी, सिर्फ रॉयल फैमिली के लोगों को बीमारियां होती थी इसमें द्वापर युग में, क्योंकि सबसे पहले राजा गिरते थे, प्रजा फॉलो करती थी, है ना, तो इसलिए पहले राजाओं को बीमारियां होती थी, फिर धीरे धीरे पब्लिक में भी बीमारियां आने लगी, है ना। तो कलयुग में सब सभी बीमार, अभी तो सभी बीमार हैं, कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो बीमार नहीं हो, मन से भी बीमार, तन से भी बीमार, तो धीरे धीरे सब बीमार हो गए, है ना, इस तरह से हालत हो गई। अब जो है बाबा आ गए, अब बाबा ने क्या किया आकर के, बाबा ने क्या किया, बाबा के बाबा 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 आए, परमात्मा आए, परमात्मा और आत्मा में क्या फर्क है, परमात्मा सदा सत्य है, परमात्मा सदा सत्य है, सदा सत्य क्या का अर्थ है, वो सदा ही आत्मा है, सदा ही परमात्मा है, उसे सदा ही स्मृति है, हमें सदा स्मृति है क्या, मैं आत्मा हूं, आपको सदा स्मृति रहती है, आप तो टीचर बहने हैं, सदा स्मृति रहती है मैं आत्मा हूं, कई बार तो सिर्फ इतना याद रहता है मैं टीचर हूं, या तो नाम ही याद रहता है ना, भूल जाते हैं मैं आत्मा, जब योग करने बैठे थे करते नहीं, मैं स्थूल देह नहीं, स्थूल देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, याद दिलाना पड़ता है ना, मैं परमात्मा की संतान हूं याद दिलाना पड़ता है, नहीं दिलाना पड़ता, या अपने आप याद रहता है, याद अपने आप, तो परमात्मा को सदा ही स्मृति में परमात्मा हूं, सुप्रीम सोल हूं, है ना, परमात्मा के अंदर सदा ही स्मृति है, वो सदा ही सत्य है, वो सदा ही जन्म मरण से न्यारा है, वो सदा ही ऐसा है, राइट, वो सदा सत्य है, पहली प्रॉपर्टी उसकी है, दूसरी प्रॉपर्टी वो सदा पावन है, सदा पावन है, पावन माना वो हम सबको कभी भी, हम सबको आत्मा ही देखता है, हमसे किसी से भी उसका लगाव झुकाव प्रभाव टकराव नहीं है, किसी भी ना लौकिक से, ना किसी लौकिक से, ना किसी बीके से, ना नॉन बीके से, है ना, उसको ये नहीं लगता ये बीके है नॉन बीके है, वो सब उसके लिए आत्मा है, सबको आत्मा देखता है, किसी की शक्ल नहीं देखता है, बहन भाई भी नहीं देखता है ना, वो सब आत्मा देखता है, सबको सदा ही आत्मा देखता है, उसको किसी से लगाव झुकाव प्रभाव टकराव नहीं है, उसको किसी के बीमार होने से, किसी को कुछ होने से, किसी को कुछ भी हो जाने से, ड्रामा में कुछ भी हो जाए, विनाश हो जाए, हजार लोग मर जाए, एक करोड़ लोग मर जाए, बम गिर जाए धरती के ऊपर, कोई एटम बम डाल दे, उसको संकल्प नहीं चलते, वो कभी क्या क्यों कैसे नहीं करेगा, क्यों बम डाला उसने नॉर्थ कोरिया वाले ने, इसने ऐसा क्यों किया, इसको ऐसा कुछ, उसको ड्रामा में पता सब कुछ एक्यूरेट हुआ है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, वो सब कुछ जानते हैं, सदा पावन है, ये पावन का मतलब ये है, राइट, वो सदा ही शांत है, उनको ना पास का चिंतन चलता है ना भविष्य का चिंता होती है, और ऐसा सोचता है वर्तमान के बारे में कभी उनको संकल्प नहीं चलते हैं। उनको वर्तमान में भी जो ड्रामा में होना होता है वो संकल्प आता है, उनको यहां आना है, पधरामनी होनी है, बच्चे बैठे हैं 10,000-20,000 बच्चे बैठे हैं, तो उनको ड्रामा में आना है तो उनको संकल्प आता है कि मैं नीचे जाऊं। ये नहीं कि बाबा सुबह से सोच रहा होता है मेरे को आज नीचे जाना है, शाम को अभी जल्दी जाऊं, दादी गुलजार बैठ गई होगी मैं जाऊं अभी, ऐसे नहीं चलता है। उसको चलता है कि बाबा को सदा शांत है, मतलब शांति का सागर, ये शांति का सागर है, उसको कोई संकल्प चलता ही नहीं। तो हम मास्टर शांति का सागर क्या मतलब क्या होना चाहिए, हमको संकल्प चलना चाहिए, चलना चाहिए। शांति का मतलब क्या है वो हमें, शांति का मतलब हमें भी संकल्प नहीं चलना चाहिए, जो ड्रामा में होना चाहिए होना होने वाला हमको टच होना चाहिए। ना पास का चिंतन चलना चाहिए ना भविष्य की चिंता होनी चाहिए, वर्तमान में भी बाबा से कंबाइंड होके। अब जैसे मैं सत आत्मा और परमात्मा के मैं उसको कंपेयर करता जाता हूं, आत्मा सत्य है कि तू, आत्मा क्या है, आत्मा ज्ञान, आत्मा क्या है, आत्मा ज्ञान, आत्मा में मतलब पहली एनर्जी कौन सी, ज्ञान। परमात्मा सदा ही सदा मतलब ज्ञान का स्वरूप है, ये ज्ञान का सागर है, मतलब सदा सत्य है। तो आत्मा में सत्य क्या है, चार बातें हैं, चार सत्य हैं। एक तो आत्मा सत्य है, ये मुरली जो बाबा हमें सिखाता, बाबा कैसे हमको पावन बना रहा है, कैसे हमको विक्रमाजीत बनाएगा, कैसे हमको कर्मातीत बना रहा है। अब जो है ये मुरली जो है बाबा, इसमें चार बातें मुख्य रहती हैं। एक तो आत्मा का ज्ञान रहता है, आत्मा की समझ, सत्य की समझ रहती है। सत्य की समझ माना क्या, उसमें पहली समझ आत्मा, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा, देह को चलाने वाली आत्मा हूं, यहां बैठी हूं 2.5 इंच अंदर 3 इंच नीचे यहां से, है ना, वो मेरी सीट है। और दूसरी जो समझ आत्मा के पास जो समझ है, बाबा जो हमें सिखाता है, वो परमात्मा की समझ देता है कि बच्चे तुम मेरी संतान हो, है ना। और तीसरी समझ देता है कि तुम्हारा और मेरा संबंध, तुम्हारे सरल संबंध मेरे साथ हैं, वो सदा हैं। सत्य माने बताया ना, सत्य माने सदा, अविनाशी, एटर्नल और ना बदलने वाले, सारे संबंध तुम्हारे मेरे साथ हैं। मुख्य 9 संबंध का तुम्हें अनुभव होना चाहिए। एक तो मां का संबंध, बाप का संबंध, टीचर का संबंध, सतगुरु का संबंध, बंधु, बंधु माना बड़ा भाई का संबंध, सखा माना दोस्त का संबंध, साजन मोस्ट बिलेवड, और फिर सर्जन बच्चा। ये मुख्य 9 संबंध का अनुभव तुम्हें होना चाहिए। हालांकि उससे आप कोई भी संबंध हमारा हो सकता है, वो धोबी भी बन सकता है, आपके साथ खाना भी बना सकता है, रसोईया भी बन सकता है, गाड़ी आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी भी साथ में गाड़ी भी चला सकता है, आप जो कहो वो कर सकता है, आप कोई काम कर रहे हो आपके साथ वो उस काम में साथ में है आपके, जिस भी काम में चाहो उसको अपने साथ लगा सकते हो, है ना। बर्तन मांज रहे हो, बर्तन मांजने वाला भी बन सकता है, आपको सिर में दर्द हो मालिश भी कर सकता है ना, कुछ भी उसको आप काम करना चाहो वो काम आपका करके देगा, ठीक है, फ्री में, और आधी रात को आधी रात भी करके देगा, हर समय करके देता है, हर जगह करके देता है। ऐसा नहीं कि मैं यहां नहीं आऊंगा, मैं बच्चे तुम जा कहो, जहां कहो मैं सदा हाजिर हूं। आप ओके जी हजूर, जी हाजिर, है ना, बाबा सदा ऐसा है, हर संबंध हर जगह है हमारा बाबा के साथ। और चौथा बात है ड्रामा, चौथा हमें ड्रामा की समझ देता है, ड्रामा भी सत्य है। इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है, और परमात्मा इसका क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, सुप्रीम जस्टिस भी है, और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। इसलिए अब तक जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ है, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। जबकि आज दुनिया की प्रॉब्लम क्या है, सभी बीमारियों का कारण क्या है, चाहे मन की बीमारी हो चाहे शरीर की बीमारियां, सबका कारण है मेरे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ है, मेरे माँ बाप ने ऐसा किया, मेरे भाई बहनों ने ऐसा किया, मैं जहां पे मेरे को टीचर, मेरे को जिस सेंटर पे हूं मुझे वहां पे अच्छा व्यवहार नहीं मिला, वहां पे मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं इतनी सेवा करती हूँ, इतना करती हूँ तो भी लोग मुझे, मेरे को अप्रिशिएट नहीं करते, होता है ना ऐसे, मेरे को ऐसा होता है, मेरे को ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। ये जो चीज है ना, जो हुआ अच्छा हुआ है, कर्मों का हिसाब किताब के अनुसार। हम अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपने 100 साल पहले किसी 10 रुपए उधार लिया, और 100 साल के बाद में आपका वो भाई बन के आ गया, या टीचर बहन बन के आ गई, इंचार्ज बन के आ गए, छोटी बहन बन के आ गई आपके सेंटर पे, अब 100 साल के बाद उसको 10 रुपए वापस देने पड़ेंगे आपको और ब्याज के साथ देने पड़ेंगे। ब्याज कितना होता है पता है आपको? 100 साल का ब्याज कितना होता है? कितना? 10 रुपए का ब्याज कितना होता है? आप घर में जाके कमरे में जाके हिसाब लगाना, 4,19,00,000 रुपया होता है ना, 4,19,00,000 रुपया होता है। आप सोच रहे हैं बहुत, इतना कैसे आया? सचमुच में 20 गुना हो जाता है, 20 गुना है ना, 100 साल में 20 गुना हो जाता है। आप करके देखेंगे तो आपको समझ आए, डबल करते जाना, 20 बार डबल करना आपको इतने इतना पहुंच जाएगा है ना। 4,19,00,000 से थोड़ा ज्यादा होता है ना। सोचो आपने किसी के एक बार इंसल्ट किए हुए 100 साल पहले, इस जन्म में वो आपकी 20 बार इंसल्ट करेगा, मतलब एक इंसल्ट का ब्याज कितना हो गया 100 साल में? 20 बार हो गया। तो 20 बार आपको प्यार से इंसल्ट सहनी पड़ेगी, सहन करके समानी पड़ेगी। एक बार गलानी की होगी 100 साल पहले, वो छोटी बहन या बड़ी बहन के रूप में वो आपको इंसल्ट करेंगे, आपकी गलानी करेंगे, है ना। आपने एक बार महिमा की होगी 100 साल पहले, 20 बार आपकी महिमा होगी अभी, ठीक है, सहनी पड़ेगी आपको, है ना, महिमा। बल्कि आप महिमा के लायक नहीं होंगे तो भी आपकी महिमा सहनी पड़ेगी आपको, सुना आपका, है ना। तो ग्लानी और महिमा जो भी होता है वो हमारे कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार होता है। कोई बीमारी, कोई दोषी नहीं है मेरे कर्म, मेरे शरीर में बीमारी के लिए, मेरे मन में बीमारी के लिए कोई व्यक्ति दोषी नहीं है, मेरे कर्म दोषी है, राइट। इसलिए अब तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है। तो बाबा हमको ये चार बात का ज्ञान देता है, इससे मेरी मन बुद्धि पवित्र होती है। पवित्रता का मतलब क्या है? पवित्रता का मतलब है अब बाप से कंबाइंड होकर, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर, बाप से कंबाइंड होकर, सत्य बाप से कंबाइंड होकर, फिर दूसरों के सत्य स्वरूप को देखना, चाहे कोई भी है, सेंटर पे, बाहर, जिज्ञासु, कोई भी, बीके, नॉन बीके, उसके सत्य स्वरूप को देखना और सत्य स्वरूप में व्यवहार करना। किसी भी देहधारी से, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक से, लगाव रखना, झुकाव रखना, प्रभाव टकराव में आना, यह भी अपवित्रता है। ड्रामा में किसी के पार्ट को देखे, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कैसे करना, यह भी अपवित्रता है। और मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क स्वपन में भी ब्रह्मचारी रहना, खाली कर्मों में ब्रह्मचारी नहीं, संघ में ब्रह्मचारी नहीं, मन में भी ब्रह्मचारी रहना। ब्रह्मचारी का क्या मतलब है? जैसे ब्रह्म तत्व में आत्माएं आचरण करती हैं दूसरे के साथ, एक दूसरे को आत्मा देखती है, ऊपर परम धाम में बिंदु बिंदु को देखता है ना, ऐसे ऐसे हम सबको एक दूसरे को देखना चाहिए, संकल्प से भी, बोल से भी, कर्म से भी, संबंध संपर्क से भी। और फिर ब्रह्मचारी, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क से ब्रह्मचारी बनना, जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे मुझे वैसा करना है। तो यह है संपूर्ण पवित्रता। तो जितना हम ऐसे, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि बाबा की गोद में हूं, ब्राह्मण बनाए मैं बाबा की गोद में हूं, बाबा मेरे साथ हर संबंध से मेरे साथ है, हर जगह मेरे साथ है, हर समय मेरे साथ है, और जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। कल क्या होने वाला है? आज शाम को क्या होने वाला है? बहुत अच्छा होने वाला है। कल क्या होने वाला है? उससे भी अच्छा। परसों? उससे भी अच्छा। और भविष्य में क्या होने वाला है उसकी तो बात ही मत पूछो, है ना, उसकी बात पूछ सकते हैं क्या? सोने के महलों में रहेंगे, सोने जैसी काया होगी, है ना, कभी बीमार नहीं होंगे, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी कमाना नहीं पड़ेगा, खाना बनाना नहीं पड़ेगा, नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, खाएंगे, सोएंगे और डांस करेंगे ना, राज करेंगे, यही तो करना है सत्युग में ना। तो ये हमें सबसे बढ़िया होने वाला है ना, तो ऐसी दुनिया आने वाली है ना। तो अभी ये हमको जैसे बार बार, जैसे इस एबीसीडी, मैं इसको एबीसीडी कहता हूं, ए आत्मा, बी बाबा, सी कनेक्शन मन संबंध, डी ड्रामा। तो जितना इस मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरन करते जाते, उसके स्मृति स्वरूप बनते जाते, हमारी मन बुद्धि पवित्र होती जाती। इसको हम कहते देही मन स्थिति। देही मन स्थिति मन, जितना हम देह अपने अपने को इस देह में रहते, अपने को देही समझ करके बार बार इस स्मृति को जागृत करते जो बाबा ने हमें दी है, ये बाबा ने जो हमें ज्ञान समझाया है, सत्य की समझ दी है, इसको हम बार बार जागरण करते हैं, इसको बार बार जागृत करते हैं ना, कि मैं ये नहीं, मैं यहां हूं, ये हूं मैं, ये मेरा वो नहीं, ये नहीं मेरा वो है, मेरे संबंध इनके साथ नहीं उनके साथ है, और जो देख रहा हूं ड्रामा में, ये जो है मेरे कर्मों का फल है, जो हुआ अच्छा हुआ है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होने वाला सबसे अच्छा होने वाला है। इससे मेरी बुद्धि यहां से हट गई, अब मेरी बुद्धि ऊपर लग गई। तो जितना मैं करता जाता हूं मेरा मन बुद्धि पवित्र होता जाता है। जैसे पवित्रता आई तो इससे शांति आई। शांति का मतलब क्या है? न पास्ट का चिंता, न भविष्य की चिंता, वर्तमान में बाबा के साथ कंबाइंड होकर सोचना, बाबा से अकेले अकेले मत सोचो, बाबा से कंबाइंड होकर सोचो, बाबा से कंबाइंड होकर देखो, बाबा से कंबाइंड होकर पढ़ो, बाबा से कंबाइंड होकर सुनो। किसी की बात सुननी है, अच्छा भाई पहले आप बैठ जाओ, एक मिनट बाबा को याद करो, अभी बाबा से कंबाइंड हो जाओ, फिर उसकी बात सुनो। कुछ बोलना है, कहीं भाषण करना है, किसी से कुछ कहना है, तो बाबा से कंबाइंड होके बोलो। खाना है, कुछ लंच करना है, डिनर करना है, बाबा से कंबाइंड होके खाओ। बाबा से कंबाइंड होके हर काम करना, पैदल करना है बाबा से कंबाइंड होकर करना, सोना है बाबा से कंबाइंड होकर करो, खाना बनाना है बाबा से कंबाइंड होकर करो, कुछ भी काम करना है, कोर्स कराना है बाबा से कंबाइंड होकर करो। इसको बोलते हैं शांति, क्योंकि बाबा से कंबाइंड होकर, बाबा ऐसा सोचता है तो हमारी सोच, हमें प्रॉब्लम क्या है, हम बहुत ज्यादा सोचते हैं। बाबा पर हम में क्या फर्क है, हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, बाबा ऐसा सोचता है। तो बाबा के साथ शांति के सागर से कनेक्शन होगा तो हमें शांति आएगी। जितना मतलब हमारे विचार कम से कम हो जाएंगे, जितने जरूरी हैं वही आएंगे। शांति आएगी तो रूहानी प्यार आएगा। रूहानी प्यार का क्या मतलब है? रूहानी प्यार माना इस संसार रूपी नाटक में या विश्व रूप इस विश्व में, मतलब पहले बाबा के साथ कंबाइंड हो जाओ, फिर विश्व में हर आत्मा को, ये हर पार्ट को देख, हर पार्ट को महत्व दो, विश्व में हर आत्मा के पार्ट को महत्व देते हुए बिना शर्त के आदर के साथ उसके हर रोल को स्वीकार करो, आदर से स्वीकार करो, और फिर ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर रहकर, नियम मर्यादाओं के अंदर रहकर उसकी पालना करो। चाहे कोई आतंकवादी भी हो, चाहे कोई रावण भी हो, कुंभकर्ण भी हो, मेघनाथ भी हो, शूर्पनखा भी हो, मंथरा भी हो, कोई कैसा भी हो, मुझे उसको आदर, उसको भी आदर देना, क्योंकि इस ड्रामा का वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो हमारे सेंटर पे भी हो सकता है, हमारे जिज्ञासु में भी हो सकता है। किसी को इग्नोर करें, अगर आप कोई गुस्सा कर रहा हो उसको आप इग्नोर करें तो क्या होगा? वो और जोर से गुस्सा करेगा। वो गुस्सा कर रहा है, उस गुस्से को भी प्यार से समझो, उसको ठंडा पानी पिलाओ, उसके गुस्से के कारण जानो, उसको भी महत्व दो। ये नहीं कि फालतू ही गुस्सा करता ही रहता है, ये तो गुस्सा करती ही रहती है बहन, इसका इसकी नेचर ही ऐसी है। नहीं, ऐसा नहीं, ये भी रूहानी प्यार नहीं है। बाबा, मैंने बड़ी दादी को देखा है ना, बड़ी दादी को देखा है मैंने, बाबा के बारे बहुत सुना हुआ है, कैसे बाबा एक एक आत्मा को कैसे प्यार करते थे। शिव बाबा को ऊपर सबसे प्यार है ना, हम सबसे प्यार है कि नहीं है? तो ऐसा ये रूहानी प्यार, ऐसा जब किसी से लगाव झुकाव प्रभाव टकराव नहीं, सबको एक्सेप्ट किया जब आपने, तो आप कहां पहुंच गए? सूक्ष्म वतन में पहुंच गए। सूक्ष्म वतन माना बाबा के दिल। अगर आपका किसी एक से भी लगाव है, झुकाव है, प्रभाव है, टकराव है, तो हम बाबा के दिल तक पे नहीं पहुंच सकते। अभी तक एक ही बच्चा बाबा के दिल तक पे पहुंचा है, वो कौन है? शिव बाबा के दिल तक पे कौन पहुंचा है? ब्रह्मा बाबा। अभी तक सिर्फ एक ही बच्चा बाबा का संपूर्ण आज्ञाकारी वफादार सपूत बच्चा बन करके 48 साल से ऊपर बैठा है ना, कौन है? ब्रह्मा बाबा। वो बाबा के दिल में बैठा हुआ है, और ब्रह्मा बाबा का दिल सच्ची और साफ है, इसलिए उसके दिल में शिव बाबा बैठा हुआ है। तो ये कौन बन गए? बाप दादा। और यही सूक्ष्म वतन है। और मुझे सूक्ष्म वतन में जाना मतलब मेरे को क्या, सूक्ष्म शरीर क्या है? सूक्ष्म शरीर में पवित्र बुद्धि, पवित्र मन। जितना हम अपने मन बुद्धि को पवित्र बनाते जाएंगे, तो उतना हम ये आत्मा ऐसा महसूस करेगी इस मन बुद्धि के साथ, वो सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में जाएगी। उससे फिर अत्यंत सुख की अनुभूति होगी। बाबा की गोद में जाने से लगे बाबा मेरा, बाबा मैं बाबा का, बाबा मुझे मिल गया, पाना था सो पा लिया, तो इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, अत्यंत सुख की अनुभूति होगी, और आनंद माना बाप की, बाप के लव में लीन हो जाएंगे। आनंद माना बंधन, आत्मा, आत्मा रूपी पंछी देह और देह के दुनिया के बंधन के पार चला जाए, बाप की याद में लवलीन, में लवलीन हो जाए, खो जाए। तो ये अत्यंत सुख आनंद की अनुभूति जो है ना, बेसिकली जितना हम ये पुरुषार्थ करते जाते हैं, इसको बोलते हम आत्मानी बनते जाते हैं। और जब अतिंद्र सुख और आनंद की अनुभूति कर लेते हैं, तो ये हमारी अशरीर स्थिति हो जाती है। अशरीर माना हम देह के भान से परे चले जाते हैं। अतिंद्र सुख और आनंद की स्थिति ऐसी है जिसमें देह का भान खत्म हो जाता है, हम अशरीर बनते जाते हैं। और जब ये हमें आनंद की स्थिति का अनुभव हो जाता है, तो हम सत्य को परखने की शक्ति आ जाती है, सत्य निर्णय करने की शक्ति आ जाती है। और एक बार सत्य मैंने निर्णय कर लिया, तो हम बड़ी से बड़ी बात को छोटा बना सकते हैं, राई को पहाड़, पहाड़ का राई बना सकते हैं, विस्तार को सार में ला सकते हैं। मन बुद्धि समेट के बाबा में लगा लेते हैं, और मन बुद्धि जो बाबा में समेट के लगा लेते हैं, फिर शरीर के कर्म भोग हमारे सामने आने लगते हैं। लोग हमें खींचने लगते हैं, संबंध हमें खींचने लगते हैं, संपर्क हमको खींचने लगते हैं, सेंटर वाले भाई बहन हमको खींचने लगते हैं, है ना। तो फिर सहन करने की शक्ति आ जाती है, बाबा से करंट मिलती रहती है, हम सहन करने की शक्ति आती है, समाने की शक्ति आ जाती है, नई नई प्रॉब्लम फेस करने की, सामना करने की शक्ति आती है, और समेटने की शक्ति आ जाती है, और सहयोग करने की शक्ति आ जाती है। तो ऐसे सातो एनर्जी बढ़ती जाती है, आत्मा सत्व प्रधान बनती जाती है। अब रिटर्न जर्नी शुरू होती है, जैसे जैसे हम विक्रम विनाश करते जाते हमारी रिटर्न जर्नी शुरू हो जाती। कैसे शुरू होती? जैसे रिटर्न जर्नी की हमने, तो पहले हमारी रिटर्न जर्नी में पहले हमें कर्मेंद्रिय जीत बनते हैं। कर्मेंद्रिय जीत माना हम एक तो अन्न का प्रयोग करते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन खाते हैं, संग बाबा और मुरली दो ही सत्संग है, बाकी सब झूठ है। बाबा के अलावा, बाबा सत्य है और मुरली सत्य है, तो बाबा की मुरली का मनन चिंतन मंथन स्मरण करते हैं तो कर्मेंद्रिय जीत है ना। अपने कर्मेंद्रियों को क्या देखना है क्या नहीं देखना है, टीवी नहीं देखना है, अखबार नहीं देखना है, व्हाट्सएप नहीं देखना है, फेसबुक नहीं देखना है ना, ये सब छोड़ना है। ये संग है ना, ये भी संग है। अन्न खाली हम उसे नहीं खाते, आंखों से क्या खाते हैं, कानों से क्या खाते हैं, मुख से क्या खाते हैं, तीनों शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, है ना। स्वाद में आके खाने नहीं, कोल्ड ड्रिंक पी लूं, आज मैं आज आइसक्रीम खा लूं, आज मैं ये खा लूं, आज मैं चाय पी लूं, आज मैं कॉफी पी लूं, ना। जो बाबा ने भोजन बताया सिंपल भोजन बिना ग्रिस्ट वाला, अब मैं पराठा पकौड़ा समोसा खा के को मैं योग करूं, नहीं लगेगा योग, है ना। वो रास्तिक भोजन, आलस पैदा होगा, नींद आएगी। तामसिक भोजन खा के मैं वो अचार खा के, मिर्चें खा के, है ना, और मैं फिर चाय कॉफी बहुत सारी पी के, स्ट्रांग टी पी के, मैं सोचू मैं आप बाबा से योग लगाऊं, नहीं लगेगा, उत्तेजना पैदा हो जाएगी, है ना। गर्म मसाले खा के फिर मैं कहीं योग लगेगा मेरा, नहीं लगेगा, बेचैनी होगी शरीर में, आप जाओगे ऊपर शरीर नीचे खींचेगा, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा। तो अन्न का बहुत महत्व है ना, ऐसे संघ का बहुत महत्व है। खाली बाबा और बाबा की मुरली का संग करो, और किताबें और कोई चीज पढ़ना, व्हाट्सएप पे इसकी बात उसकी बात सुनना, उसको मैसेज भेजना, नहीं, बेकार की बातें, छोड़ देना चाहिए। बहनों को तो जरा भी नहीं करना चाहिए, भाइयों को भी नहीं करना चाहिए, हम नहीं करते, तो भाइयों को बहनों को किसी को नहीं करना चाहिए, बाबा के सच्चे ब्राह्मण बच्चों को नहीं करना चाहिए, है ना। और फिर बाबा की आज्ञा क्या है, पवित्र बनो, योगी बनो। सदा पवित्रता का मतलब मैंने बताया, क्या सदा पवित्र का मतलब है, योगी माना निरंतर योगी, श्वास श्वास हमारा अभ्यास होना चाहिए। तो पहले कर्मेंद्र जीत बनते हैं, कर्मेंद्र जितना बनते हैं तो धीरे धीरे फिर माया जीत बनते हैं, माया हमारा पांचों विकार पे हमारी जीत प्राप्त होती जाती है। फिर माया जीत बन, जैसे हम पांचों विकार हमारे वश में आते जाते, फिर उतना हम क्या होते, उतना हम प्रकृति जीत, अर्थात ये देह रूपी प्रकृति हमारे वश में आने लगती है। भले हमें बीमारी है, ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज भी हो जाती, हमारी कमर भी दर्द होती, हमारे सिर में भी तकलीफ है, गर्दन भी तकलीफ देती है, घुटने भी तकलीफ देते हैं, कुछ भी होता है। आप बहने इतनी ओल्ड नहीं हो, और दूसरी बहने जो ओल्ड होती है उनको ज्यादा तकलीफें होती हैं, तो फिर भी जैसा भी शरीर है उस पर हमारी जीत प्राप्त, उसको हमारी हमारी ना याद में प्रॉब्लम बनती है ना सेवा में प्रॉब्लम बनती है, राइट। तो प्रकृति जीत, और फिर जितना जितना आप याद करते जाओगे, चार नियम चार मर्यादाओं के अनुसार ब्राह्मणों के चार धर्म है, चार धर्म, पहला धर्म है पवित्रता, है ना, पवित्रता की परिभाषा हम समझ चुके हैं, और अन्न शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग और दैवी गुणों की धारणा, और ब्राह्मणों के कर्म क्या है, पावरफुल अमृत वेला। सच्चा ब्राह्मण कभी अमृत वेला मिस नहीं करता है, दूसरा सच्चा ब्राह्मण कभी मुरली मिस नहीं करता है ना। क्लास में बैठ के भले आप टीचर हैं, फिर भी स्टूडेंट बनकर आराम से बैठना चाहिए, सारा काम छोड़ के भी मुरली सुननी चाहिए, है ना। मुरली सुनाते हैं अच्छी बात है, किंतु नहीं सुनाते हैं उस दिन, तो उस दिन बैठ के सुननी चाहिए क्लास में, ताकि औरों को भी प्रेरणा मिले। और फिर सारा दिन मुरली पर अटेंशन माना मनन चिंतन मंथन सिमरण, और फिर सोने के पहले पोता मेल देना चाहिए बाबा को रोज, ना लेटर लिखना चाहिए, बाबा सुबह से मेरे से गलती हुई, यहाँ पे मेरे अच्छा मैंने किया बुरा किया देखो। फिर चार्ट भरना चाहिए याद का, घंटे घंटे याद का चार्ट भरो, फिर मुरली पढ़ो, फिर बाबा को याद कर सो जाओ। तो ये चार बातें जरूर करनी चाहिए। तो इस तरह से जब हम करते हैं तो धीरे धीरे हम कर्मेंद्र जीत, माया जीत, प्रकृति जीत, और ये स्थिति कहलाती है विकर्मा जीत। मतलब हम रिटर्न जर्नी करते हैं ना, जैसे 84वें जन्म के पापकर्म विनाश, फिर 83, फिर 82, फिर 81, फिर ऐसे खुलते जाते पापकर्म, खत्म होते जाते। हम जब त्रेता के अंत में द्वापर के अंत में पहुंच जाते, माना त्रेता के शुरू में पहुंच जाते, तो हम विकर्मा जीत स्थिति में पहुंच जाते। और फिर बचते 20 जन्म, 8 12 त्रेता के और 8 सत्युग के। तो ये स्थिति जो होती है हमारी, ये फरिश्ता स्थिति होती, जब हम ये पूरे विक्रम विनाश हो जाए तरह से जन्मों के, तो हमारी फरिश्ता स्थिति आएगी। फरिश्ता स्थिति हमारी कर्मातीत स्थिति है, जिसमें हमें कर्मों का कोई असर नहीं पड़ता है, कि तो ये समय पे हम मनसा सेवा करते हैं, जब हम कर्मातीत जब हमारी फरिश्ता स्थिति आ जाती तो फरिश्ता स्थिति में बाप की गोद में हमेशा सूक्ष्म वतनवासी बन जाते, जब चाहे सूक्ष्म वतन माना बाबा की गोद में पहुंच जाते और वहां से सारे विश्व की सेवा करते। जो संकल्प हम करते वो बाप हर आत्मा तक पहुंचता है ना, हमारे ज्ञान के पवित्रता शांति प्रेम सुखाना शक्तियों के संकल्प पहुंचते और इस तरह से हम सबकी मनसा सेवा करते। तो कर्मातीत स्थिति जब हमारे पूरे, जैसे अभी ब्रह्मा बाबा ऊपर रुके हुए हैं 48 साल से, वो क्या कर रहे हैं, जितने भी आत्माएं सारे विश्व की उनको सकाश देते हैं, उनको उसकी सेवा कर रहे हैं। जब सेवा पूरी हो जाएगी तो वो फिर क्या हो जाएंगे, पूरे फिर विनाश शुरू होगा, है ना। ऐसे जब तक हमारी स्थिति सेवा रुकी रहेगी तब तक ये विनाश नहीं होगा। तो कर्मातीत हमारी कब तक स्थिति रहेगी, जब हमारे 20 जन्म उसमें हम फरिश्ता बनके बाबा के साथ सारे विश्व में हमारे साक्षात्कार होते रहेंगे, हमारे भक्तों को हमारे साक्षात्कार होते रहेंगे और इस तरह से हम विकर्माजीत बन जाएंगे और कर्मातीत बन जाएंगे। ठीक है, तो हमारी क्या क्या स्टेज होगी, पहले कर्मेंद्रिय जीत बनना पड़ेगा, हमें खान पान पे कंट्रोल, हमारे संग पे कंट्रोल होगा, हमें सदा पवित्र निरंतर योगी बनना पड़ेगा और इस तरह से पुरुषार्थ करते करते अमृत वेला मुरली अटेंशन सारा दिन, फिर वेंटिलेशन सोने के पहले सब बातें बाबा को बता के प्रॉपर चलते हुए, इसी को प्रॉपरली मेंटेन करते हुए हम इसी दिनचर्या पे चलते जाएंगे, श्वासो श्वास हर संकल्प बाबा को याद करते रहेंगे तो विकर्माजीत पहुंच जाएंगे। पर इसमें स्थिति ऊपर नीचे होगी, सदा एक जैसी नहीं रहेगी, ब्राह्मणों की स्थिति हमेशा ऊपर नीचे होती है, तो हमेशा एक दूसरे किसको देखना नहीं, एक बाबा के अलावा किसको देखो नहीं। और हम विकर्माजीत की स्थिति माना हम 63 जन्म के पाप कर्म विनाश होने के बाद हमारी स्थिति स्टेबल हो जाएगी, एकदम एकरस स्थिति हो जाएगी, एकरस स्थिति होने के बाद फिर हमारी फरिश्ता स्थिति होगी और फरिश्ता स्थिति से हम सारे ऋषि की मनसा सेवा करेंगे और फरिश्ता स्थिति होने के बाद 99% सेवा तब शुरू होगी, जो आज बाबा ने कहा अखबारों में पढ़ेगा ऐसे जय जयकार आपकी होगी, तो फिर मनसा वैसी स्थिति हो जाएगी और उसके बाद फिर हमारी लास्ट में जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो फिर लास्ट में जब सब आत्माओं को संदेश पहुंच जाएगा उसमें विनाश, तो विनाश तो हमारी विक्रमाजीत बनता ही शुरू हो जाएगा और फिर हमारा फरिश्ता का पाठ शुरू होगा, वो कर्मातीत का पाठ शुरू होगा और फिर वापिस हम अपने घर बाबा के साथ, जब बाबा ने कहा अंत तक जब तक आग पूरी होगी हम यहीं रहेंगे पूरा काम करके, आग पूरी होने के बाद बाबा के साथ वापस घर जाएंगे। ओम शांति।
खुशी।